नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, धौलपुर में सेना की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार लोगों के नेत्र स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रही है। और बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें 50 बहुउत्पाद खाद्य इकाइयां स्थापित करने में सहयोग के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी।
साइंटिफिक तरीके अपनाने से किसानों की इनकम में सुधार आता है, इसीलिए जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए फूड टेस्टिंग लैब्स की स्थापना की जाए। तो आज के फैसले में ओवरऑल आउटले बढ़ाया गया 6,520 करोड़ रुपीस, और उसमें से 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली रखा गया 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए।
मंत्रिमंडल ने 4 वर्षों की अवधि के लिए 2,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अनुदान सहायता एनसीडीसी को भी मंजूरी दी है। एनसीडीसी इस दौरान खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। इस राशि का इस्तेमाल नई परियोजनाओं की स्थापना या संयंत्रों के विकास के लिए सहकारी समितियों को ऋण देने में किया जाएगा। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह हल्की से मध्यम, वहीं कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी जिलों में पिछले 2-3 दिन में हुई तेज बारिश के कारण चंबल और सहायक नदियां उफान पर हैं। करौली में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं धौलपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 13 मीटर ऊपर पहुंच गया है। इस कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राहत और बचाव कार्य के लिए सेना की मदद ली जा रही है।
हाड़ौती आंचल में लगातार हो रही तेज बारिश और कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद धौलपुर जिले में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इस कारण जिले में करीब 40 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने सेना को बुला लिया है और सेना ने आकर मोर्चा संभाल लिया है। इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी वहां लगाए गए हैं। साथ में ही लोगों को निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए अन्य सभी सामानों को उपलब्ध करा लिया गया है। वहीं बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों को भी जिला प्रशासन ने सरकारी भवनों तथा अन्य स्थानों पर ठहरा दिया है तथा उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस के आला अधिकारी भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके पूछताछ कर रहे हैं, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर।
उधर सवाई माधोपुर में आज बारिश की गति धीमी होने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि अभी भी जिला मुख्यालय और कई गांवों के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले रास्ते पर अभी भी आवागमन बाधित है। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क अभी भी बहाल नहीं हो पाया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
सुरवाल बांध के ओवरफ्लो से निकले पानी से बांध से लेकर सुरवाल गांव तक खेतों और मकानों में पानी घुसने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोटा मेगा हाईवे पर भी सुरवाल, मेनपुरा और अजनोटी गांवों में 2 से 3 फीट पानी जमा होने से मार्ग पर यातायात अवरुद्ध है। इस पानी के चलते अनेक गांव टापू बन गए हैं। भारी बारिश के चलते रणथंभौर दुर्ग मार्ग भी क्षतिग्रस्त होने से यातायात अवरुद्ध है। बनास में तेज प्रवाह के चलते अनेक मार्ग बाधित हैं। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्र में अवकाश 2 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
आज चूरू, सीकर, अलवर, नागौर, अजमेर तथा टोंक जिलों के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। उधर हाड़ौती क्षेत्र में भी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। कोटा के खातौली में घरों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अलवर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए नागरिकों से तेज बहाव वाले नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। राजधानी जयपुर में दिन भर बरसात का दौर चला। दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, पाली और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। तेज बारिश की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों में कल का भी अवकाश रखा गया है। मौसम विभाग ने आज जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू और नागौर जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई अन्य जिलों के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी शेखावाटी अंचल तथा बीकानेर संभाग के जिलों में तेज बरसात का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है। शनिवार से तेज बारिश का दौर थमने की संभावना है। राज्य में जर्जर भवनों का तत्काल चिन्हीकरण कर उन्हें नियमानुसार गिराया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने आज जयपुर में सभी नगरीय निकायों को उच्चाधिकारियों को सतर्क रहते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्य में चल रहे भारी बरसात के दौर को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई। इस दौरान श्री जैन ने जर्जर भवनों की पहचान और उन्हें गिराने के लिए चलाए जा रहे राज्य स्तरीय अभियान की प्रगति की जानकारी ली। श्री जैन ने बताया कि अभियान के तहत अब तक राज्य के 224 नगर निकायों में कुल 2699 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर के रामदेवरा में नेत्र कुंभ समारोह का उद्घाटन किया। 33 दिन चलने वाले नेत्र कुंभ में शिविर लगाकर बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नेत्र स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है ताकि प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां और रोशनी फैलाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर साल लाखों लोगों की मोतियाबिंद की मुफ्त सर्जरी की जा रही है।
स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है ताकि प्रदेशवासियों के जीवन में खुशियां रोशनी फैलाती रहे। प्रदेश में हर साल लाखों लोगों को मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की जा रही है। नेत्र चिकित्सा और सहायकों को नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। नेत्रदान के माध्यम से कॉर्निया प्रत्यारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे हजारों लोगों की दृष्टि प्रदान की गई है और उनके जीवन में उजियारा लाने का काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने इससे पहले बाबा रामदेव पैनोरमा का अवलोकन किया। उन्होंने पैनोरमा स्थल पर पेड़ लगाकर आम जन को पौधरोपण का संदेश दिया। श्री शर्मा ने बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना की। केंद्र सरकार के जीवन संजीवनी अभियान के तहत आगामी 3 अगस्त को 15वां अंगदान दिवस मनाया जाएगा। आम जन को अंगदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा संजीवनी अभियान लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में 12 के जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान लोगों को अंगदान की शपथ दिलाई गई। झुंझुनू में लोगों को अंगदान के वास्ते प्रेरित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जिला कलेक्टर डॉ अरुण गर्ग ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा लोगों को स्वेच्छा से अंगदान की प्रेरणा मिलती है।
3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जा रहा है और इसमें ये विशेष प्रयास है कि अंगदान महादान और इसमें जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाके एक शपथ लेनी होती है कि मैं अंगदान करने के लिए सहमत हूँ और आधार बेस्ड वो होती है और इसका पर्पज ये है कि अंगदान के बारे में व्यापक स्तर पे इसका प्रचार प्रसार हो, हर व्यक्ति इससे जुड़े ताकि हम अपना अंगदान करके किसी और का जीवन सेव कर सकते हैं। अंगदान की इस मुहिम को भी हम चाहते हैं कि आम जन तक ये पहुंचे और भविष्य में अंगदान की जो परसेंटेज है वो बढ़े ताकि मानव के जो अंग हैं वो काम आ सके।
बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कल से लागू हो रहा है। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में शासन मानकों में सुधार लाना और जमाकर्ताओं तथा निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके अलावा अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य पर्याप्त ब्याज की सीमा को 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपये करना है। ये 1968 से अपरिवर्तित रही सीमा को संशोधित करेगा। इस अधिनियम के जरिए सहकारी बैंकों में निदेशक के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। रेलवे कल से रामदेवरा मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जोधपुर रामदेवरा जोधपुर ट्रेन 7 सितंबर तक कुल 38 ट्रिप करेगी। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ये रेलगाड़ी रोजाना जोधपुर से सुबह 4 बजे रवाना होकर सुबह 7:45 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। इसी तरह ये ट्रेन रामदेवरा से सुबह 8:25 पर रवाना होकर दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचेगी। ट्रेन में यात्री सुविधा के लिए 8 जनरल और 2 गार्ड डिब्बों सहित कुल 10 डिब्बे होंगे। पूरी ट्रेन अनारक्षित होगी। वहीं दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुणेचा एक्सप्रेस कल से 27 अगस्त तक वाया जयपुर चलाई जाएगी। फुलेरा रिंगस रेवाड़ी रेलखंड के बीच डबल ट्रैक के निर्माण कार्य की वजह से यह फैसला लिया गया है। राज्य में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अब से किसी भी सिख छात्र को अपने धार्मिक प्रतीकों को उतारने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि सिख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने धार्मिक प्रतीक जैसे कड़ा कृपाण और पगड़ी पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस बारे में संबंधित एजेंसियों विभागों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी। राज्य के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। धौलपुर में सेना की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार लोगों के नेत्र स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रही है। और बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।